लावण्या के माता पिता सामने बैठे हुए थे और उन्होंने आस्तिक की बात सुनी। वो दोनों एकदम से डर जाते हैं और हैरानी से आस्तिक को देखने लगते हैं। फोन रखने के बाद आस्तिक डेविल स्माइल करता हुआ उन दोनों को देखकर कहता है, आपकी बेटी ने गलत पंगा लिया है। उसे लगा कि मैं उस तक कभी पहुंच नहीं पाऊंगा, पर उसे नहीं पता था मेरे पास उसे तक पहुंचाने के और भी तरीके हैं। लावण्या की माँ धीरे से आस्तिक को देखकर डरते हुए कहती है, आस्तिक बेटा, क्या तुम ये सब सिर्फ लावण्या से बदला लेने के लिए कर रहे हो? तुम मेरी बेटी के साथ क्या करने वाले हो? लावण्या की माँ डरते हुए उसे सवाल कर रही थी, लेकिन आस्तिक के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वो मुस्कुला रहा था, जैसे कि ये उसके लिए गेम की तरह है। वो अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए कहता है, फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है आपकी बेटी के साथ कुछ करने का। वो क्या है ना, आपकी बेटी मेरी टाइप की नहीं है, इसीलिए जब इरादा था तभी उसके साथ कुछ नहीं किया। और जहां तक बात रही लावण्या को सजा देने की, तो लावण्या ने वो किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे खिलाफ साजिश रची है और यही बात है जो आज आप लोग अपने ही घर में कैद होकर बैठे हुए हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं इस हद तक नहीं आना चाहता था, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं रखा था, इसीलिए उसने मुझे मजबूर किया और आज मैं आप लोगों के सामने हूं। तभी अचानक से बाहर गाड़ी की आवाज आती है और इसी के साथ आस्तिक के आदमी दरवाजे की तरफ आते हैं। उन्होंने दरवाजा खोला और भागते हुए लावण्या घर के अंदर दाखिल होती है। लावण्या ने जब देखा कि उसके पूरे घर में आस्तिक के आदमी हैं, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। गाड़ी से निकलकर वो तेजी से दौड़ते हुए घर के अंदर दाखिल होती है और जैसे ही उसकी नज़र हॉल में बैठे अपने माता पिता पर जाती है, तो वो एक राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसके माता पिता अभी तक जिंदा थे। पर आस्तिक सामने था और आस्तिक को देखकर लावण्या की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। आस्तिक ने भी उसे बहुत अच्छे से देखा था, क्योंकि लावण्या वो नहीं थी जो अपना चेहरा छुपाकर घूमती, लेकिन इस वक्त उसने अपने पूरे चेहरे को एक काले दुपट्टे में लपेटा हुआ था और उसके चेहरे से उसने आधे हिस्से को अपने दुपट्टे से छुपा रखा था। इसके ऊपर उसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था, मतलब कि वो छुप रही है, वो बचना चाहती है। उसे पता था कि आस्तिक के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उसने छुपाने का और खुद को छुपाने का ऐसा तरीका निकाला, लेकिन उसे नहीं पता था कि आस्तिक उस तक पहुंच जाएगा और वो भी उसके माता पिता के जरिए। उसके माता पिता ने लावण्या को पहचान लिया था और वो हैरान हो गए थे। उनकी बेटी हमेशा स्टाइलिश रहा करती थी और अपने चेहरे की ब्यूटी को हमेशा सामने दिखाया करती थी, लेकिन आज वो अपना चेहरा छुपाकर घूम रही है। आस्तिक ने एक सार्कास्टिक टोन में लावण्या को देखते हुए कहा, लोग ऐसा काम करते ही क्यों हैं कि उन्हें अपना मुंह छुपाकर रखना पड़े? लावण्या ने अपना चश्मा निकाला और दूसरे हाथ से अपना स्कार्फ निकालकर फेंक दिया। वो गुस्से में आस्तिक को देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी पापा को जरिया बनाने की? पर अगले ही पल आस्तिक ने अपने दोनों हाथ सोफे के हैंडल पर जोर से पटकते हुए कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर रहकर मेरी बीवी के खिलाफ प्लानिंग करने की? ये सब तुमने ही शुरू किया है। मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे पीछे इस तरीके से पड़ने का, लेकिन तुमने मेरे पास और कोई चारा ही नहीं रखा है, और तुम्हें सामने लाने के लिए मुझे तुम्हारे माँ बाप को बीच में घसीटना पड़ा। ये सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब मेरे घर पर रहकर मुझे धोखा देने का प्लान बना रही थी। लावण्या के चेहरे पर एक डर आ जाता है और वो अपना चेहरा नीचे कर लेती है। आस्तिक गुस्से में लावण्या की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, पहले मुझे अमायरा से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने दिया। फिर मुझे लगा कि तुम तो मेरी पुरानी दोस्त हो, शायद तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन तुमने भी वही किया। अचानक से लावण्या की आंखों में आंसू आ गए और वो अपना चेहरा उठाकर आस्तिक को देखते हुए कहती है, आस्तिक मुझे गलत मत समझो, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे धमकाया गया था, मुझे डराया गया था और मुझे ये सब जानबूझकर करवाया गया है। अगर मैंने ये सब करने से इनकार किया होता तो कॉलेज के दिनों में जो मैंने हरकतें की हैं उनकी कुछ तस्वीर किसी के पास कैद है और वो तस्वीर को अखबार में छपा देता। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती और फिर मैं वही काम करती जो ज्यादातर लड़कियां करती हैं। मैं अपनी जान दे देती। आखिर अपनी इज्जत गंवाकर कौन लड़की है जो अपने लिए साहस कर सकती थी? लावण्या अपने आंसुओं को साफ करते हुए आस्तिक को देखकर बोली, तुम तो जानते ही हो ना, कॉलेज में सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे मरा करती थीं, लेकिन तुम थे जो अमायरा के साथ बिजी रहते थे। तुम्हें पाने वाली लड़कियों की लिस्ट में मेरा भी नाम था, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ हमेशा अपनी दोस्त के रूप में ही रखा था। कभी तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मुझे पता है अगर अमायरा नहीं होती तो शायद वहां पर मैं होती, इसलिए मुझे कभी कभी अमायरा से जलन भी होती थी, लेकिन मैं डायरेक्टली तुमसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा इतना खतरनाक होता था कि सब तुमसे कुछ भी कहने से डरते थे। अमायरा ने भी तो तुम्हारे गुस्से की वजह से ही तुम्हें धोखा दिया था, तो फिर मैं कैसे हिम्मत कर सकती थी? अगर लड़के तुम्हारे पीछे पागल थे तो लड़कियां अमायरा के पीछे पागल थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो आस्तिक रायचंद की गर्लफ्रेंड की तरफ नजर उठाकर भी देख ले। इसीलिए उन्होंने मुझे जरिया बनाया और मैं भी थोड़े पल के सुकून के लिए उनके साथ मस्ती करने लगी।
मुझे नहीं मालूम था कि उस प्राइवेट पल की फोटो और वीडियो निकल जाएगी। फ्यूचर में इस तरीके से मुझे ब्लैकमेल किया जाएगा। लावण्या की बात सुनकर आस्तिक हैरान हो जाता है। आस्तिक ही तो जानता था कि लावण्या उसकी तरफ अट्रैक्ट है, और अगर वो चांस देता तो बिना किसी रिलेशन के भी लावण्या उसके साथ लव में कर सकती थी, और बदले में वो कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेती। लेकिन फिर भी उसने अमायरा के साथ अपनी लॉयल्टी निभाई थी और लावण्या को अपनी जिंदगी जीने दी। लेकिन अब लावण्या ने जो बात उसे बताई थी, ये आस्तिक को पूरी तरह से हैरान कर गई थी। मतलब उस समय की फोटो और वीडियो का सहारा लेकर कोई अब लावण्या को ब्लैकमेल कर रहा है। वो कुछ और पूछना चाहता था, पर तभी उसे बाहर से फायरिंग की आवाज आती है। वो एकदम से हैरान हो जाता है। बाहर तो उसके बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी टीम मौजूद है ना, तो ये फायरिंग की आवाज कहाँ से आ रही है? लावण्या के माता पिता भी हैरान हो गए, और वो काफी ज्यादा डर भी गए थे। लावण्या खुद डरते हुए अपने पेरेंट्स के पास भाग कर आती है, पर आस्तिक को कुछ समझ ही नहीं आया था कि ये फायरिंग कौन खेल रहा है। तभी दरवाजा टूटता है और आस्तिक का खास बॉडीगार्ड जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके सिर के बीचों बीच गोली लगी थी। आस्तिक देखकर एकदम हैरान हो गया। उसे पर हमला हुआ था। आस्तिक ने जल्दी से अपनी कमर के पीछे से अपनी गन निकाली और सोफे के पीछे छुप गया। उसने चिल्लाते हुए अमायरा और उसके पेरेंट्स को छुपने के लिए कहा। लावण्या जल्दी अपने पेरेंट्स को लेकर कमरे की तरफ बढ़ रही थी। आस्तिक के दो तीन बॉडीगार्ड घर के अंदर दाखिल होते हैं और वो बाहर की तरफ फायरिंग कर रहे थे। लेकिन बाहर से बुलेट प्रूफ जैकेट में कुछ लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं और वो आस्तिक के बॉडीगार्ड के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। आस्तिक के बॉडीगार्ड ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट ही पहनी हुई थी, इसलिए उन्हें असर नहीं हो रहा था और आस्तिक उन लोगों से सिक्योर कर लिया था। आस्तिक भी सोफे के पीछे छुपता हुआ उनके ऊपर फायरिंग कर रहा था, जब अचानक से एक बॉडीगार्ड के सीने पर गोली लगी और वो भी आस्तिक के सामने जमीन पर दम तोड़ चुका था। आस्तिक ने गुस्से में उन चारों को देखा और वो उनके ऊपर बैक फायरिंग करने ही वाला था कि तभी लावण्या की माँ की जोर से चीखने की आवाज आती है।
आस्तिक एकदम हैरान नजरों से उस तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है। लावण्या के सीने पर गोली मारी गई थी, जमीन पर पड़ी हुई थी, उसकी आंखें खुली थी और वो तड़प रही थी। अब तक आस्तिक के बाकी के कमांडर भी वहां आ चुके थे, और जो लोग आस्तिक और उसकी सिक्योरिटी टीम पर फायरिंग कर रहे थे, उनके ऊपर जोरदार फायरिंग करते हुए उन्होंने उन चारों को मार गिराया था। लेकिन लावण्या की बहुत बुरी हालत हो रही थी। उसके सीने पर गोली लगी थी, उसका पूरा कपड़ा खून से लाल हो चुका था और उसकी सांसें भी उखड़ने को हो रही थीं।